Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 5, Verse Number 10. Kripaya, in atyant hi pavitra shabdon ko mere saath saath uchcharan karne ka prayas kijiye. Bhagavan kehte hain, Brahman yadhaya karmani, sangam tyatva karoti yah, lipyate na sa papina. पद्मपत्तमिवाम्भसा ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्तमिवाम्भसा ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्तमिवाम्भसा। शब्दों का अर्थ, ब्राह्मण याधाय कर्माणि, ब्राह्मणी अर्थात भगवान में, आधाय अर्थात समर्पित करके, कर्माणि यानी सारे कर्मों को, संगम त्यक्त्वा करोति यः, संगम अर्थात आसक्ति, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, करोति अर्थात करता है, यः मतलब जो, लिप्यते न स पापेन, लिप्यते अर्थात प्रभावित होता है, न यानी कभी नहीं, स वो, पापेन पापों से, पद्मपत्रम मेवाम्भसा, पद्मपत्रम अर्थात कमल पत्र एव यानी उसकी सदर्श, अम्भसा अर्थात जल से। अनुवाद और तात्पर्य, कृष्ण कृपा मूर्ति एक भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अनुवाद, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कार्य करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर ब्राह्मणी का अर्थ कृष्ण भावना मृत में कर्म है। यह भौतिक जगत प्रकृति के तीन गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वैदिक मंत्र सर्वम हि तद् ब्रह्म यानी मांडकुय उपनिषद नंबर 2, तस्मात् तद् ब्रह्म नाम रूपम मन्नम च जायते, मुंडक उपनिषद 1.2.10 तथा श्रीमद् भगवद गीता 14.3, मम योनिर्महद्धर्म तस्मिन् गर्वं ददाम्यहम्। इससे प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते रहते हैं, किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न हैं। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की हैं। जो यह बलि बांधे जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है, तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहते हुए भी भीगता नहीं है। भगवान भगवत गीता 3.30 में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझे यानी कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कार्य करता है कि वह यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय हो। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए हृदय से समस्त भौतिक मलिनता और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सार्वजातम् सह गणरघुनाथ पीतं तं सजीवं साध्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सह गणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपीककान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गे श्रीराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानो सुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभयश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधरम् शिवासुदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भगवद्गीता मात की जय हो। भगवान अत्यंत ही सुंदर रीति से उस व्यक्ति की अंतरिंग चेतना के विषय में बता रहे हैं जो कि योगी होता है, अर्थात वो जिसने अपने अंतरिंग चेतना यानी अपना जो योग है वो भगवान के साथ बना लिया, योग युक्त तो जो योग से युक्त है यानी जो कर्म योगी है, जो कार्य करता है तो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो भगवान ने बताया योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय, कि वो बुद्धि शुद्ध होती है, उसकी मन शुद्ध होता है, पवित्र इंद्रियों के साथ कार्य करता है और वो कोई भी कार्य करता है। भगवान ने कहा पश्यन श्रवण स्पर्शन जिग्रण अश्नन गच्छन स्वपन सशन प्रलपन विसृजन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रिया इंद्रियाधेशु वर्तन्त इति धारय, कि वो जो वो सोच रहा है कि जो भी कार्य हो रहा है वो इंद्रियां अपने विषयों के साथ जुड़ी हुई हैं, उसके कारण ही तो कार्य हो रहा है। मैं तो इंद्रिय हूँ नहीं, मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, तो फिर मैं कोई भी कार्य नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि भले हम आत्मा हैं, लेकिन ये आत्मा उस शरीर के अंदर है तभी तो कार्य हो रहा है। अभी आत्मा शरीर से निकल जाएगी फिर तो शरीर कोई भी कार्य नहीं कर सकेगा। लेकिन ये शरीर कार्य मतलब वो कौन सी चेतना है जिसके बारे में अभी ऐसे तो हम कोई भी कार्य करके बोल सकते ना, भाई मैं तो करता नहीं हूँ। जैसे हम खाएंगे या कोई अपराध भी करेंगे तो भी ये सोचेंगे भाई मैं तो करने वाला नहीं हूँ, क्या कर रहा है इंद्रिया इंद्रिया थेशु इंद्रिया ही इंद्रियों के कार्यों में कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे तो कोई भी बोल सकता है। तो भी भगवान इसी चीज को क्लियर करते हुए आज कह रहे हैं ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, यानी कि वो सारे कर्म जो है वो अपने सारे कर्म आधाय आधाय मतलब समर्पित कर देता है। किसको? ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब होता है, अभी देखो ब्राह्मण का मतलब अलग अलग होता है, एक तो ब्रह्म होता है जो ब्रह्म ज्योति उसको भी बोलते हैं, और दूसरा ब्रह्म यानी भगवान, और दूसरा एक ब्रह्म जो है वो भौतिक प्रकृति को भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई ब्रह्म समझ रहा है उसको तो ब्रह्म कौन है? अर्जुन बताते हैं 10.12 में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भव, और भगवान कहते हैं ब्रह्मण ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो ब्रह्म है वो मेरे से ही निकला हुआ है, मैं ब्रह्म से नहीं निकला हूँ, ब्रह्म मेरे से निकला हुआ है, अर्थात वो मेरा ही तेज है। तो अगर कोई ब्रह्म उसको समझ रहा है या भौतिक प्रकृति भी अगर समझ रहा है तो भगवान यहाँ श्रील प्रभुपाद ने बताया 14.3 में मम योनि महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं धराम्यहम्। तो ये भौतिक प्रकृति जो है वो पूरी यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया है कि जगत ये जो भौतिक जगत है जो प्रकृति जो प्रकट होती है वो सारी सब ब्रह्म की अभिव्यक्तियां यानी भगवान से ही आई हैं, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है, यानी कारण वो क्या है, वो भगवान ही है। भगवान ने कहा मैं ही इस प्रकृति को बना रहा हूँ, तो ये सब कुछ भगवान के लिए ही होना चाहिए। और उपनिषद में यहाँ पर बताया श्री प्रभुपाद ने कि सारी वस्तुएं परब्रह्म या कृष्ण से संबंधित है। अब वो कोई भी कार्य कर रहा है ब्रह्माधाय यानी कि वो उसी परब्रह्म यानी भगवान को आधाय समर्पित कर रहा है। वो चाहे जो भी कार्य कर रहा है वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए जब कार्य करते हैं तो उसके अंदर संग होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है संगम त्यक्त्वा आसक्ति, संग मतलब आसक्ति, लेकिन वो क्या करता है जो योगी होता है संगम त्यक्त्वा यानी आसक्ति को त्याग करोती है। वो कार्य कर रहा है अपने शरीर के द्वारा लेकिन उसके अंदर उसकी कोई आसक्ति नहीं है। वो क्यों कर रहा है? अभी या तो वो ये तो अगर भगवान को जानता है यानी भगवान को जानता है कि कृष्ण भगवान है और भगवान ही भोगता है, तो भगवान ही समस्त कर्मों के फलों को भोगना उसी के लिए है सारा। जो भी ऐश्वर्य है, जो भी सुख है, जो भी आनंद है, मैं तो क्या हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। तो मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ। अगर ये कर रहा है तो पवित्र चेतना, और अगर वो भगवान को नहीं भी जान रहा है या खाली यही सोच रहा है कि भौतिक प्रकृति, यानी ये जो ब्रह्म है, भौतिक प्रकृति ही कार्य कर रही, तो भी मैं तो वो भौतिक प्रकृति नहीं हूँ, है ना। ये शरीर भौतिक प्रकृति में आता ना, मैं तो आत्मा हूँ, ये भौतिक प्रकृति कार्य कर रही है और वो आपस में कार्य हो रहे हैं सारे, लेकिन मैं उससे भिन्न हूँ। तो फिर वो कैसा होता है, लिप्यते न स पापेन, फिर वो लिप्त नहीं होता है, पापों से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पर यह प्रश्न फिर भी उठता है कि वो पापों से लिप्त नहीं होता है लेकिन पुण्यों से, मतलब अगर हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी भी गुण में रहकर कार्य करते हैं, चाहे वो पाप हो या पुण्य, वो हमारे बंधन का कारण बनता है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है लिप्यते न स पापेन, अगर वो अपराध कर रहा है कोई भी अपने आप को भगवान का दास समझकर, जैसे अर्जुन ये सोच रहा है ना कि मैं अपराध हो जाएगा मुझसे, पाप लगेगा, मैं अगर ना सबकी हत्या करूंगा जंग में, सबको मार डालूंगा युद्ध में, तो ये भगवान की प्रशंसा के लिए यदि हो रहा है तो पाप उस पर असर नहीं करेगा, पाप जो है वो उससे लिप्त नहीं होगा पापों से, तो फिर क्या पुण्य से लिप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि हर वो कार्य जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए नहीं किया जाता है वो पाप है। चाहे वो कोई साधारण सा कार्य क्यों ना हो, जैसे हमने पढ़ा अभी 3.13 में, भुंजते ते त्वगम पापाम ये पचन्ति आत्मकारणात्। और क्या करेगा एक बंदा, खाना भी खाएगा ना यदि, तो भी अगर भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहा है, वो इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा है, तो भुंजते ते त्वगम पापा, वो बहुत पाप, वो उसको उसका रिजल्ट भोगना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, ब्रह्मण आधार, यानी सारे कार्यों को भगवान को समर्पित करता है, कार्यों में कर्म में कोई आसक्ति नहीं होती है, आसक्ति को त्याग देता है, फिर वो कोई भी कार्य उसका पाप नहीं होगा, क्योंकि वो सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए। यानी कि अगर हम भगवान को निकाल के कोई कार्य करते हैं तो चाहे वो कितना ही बड़ा पुण्य क्यों ना हो, अगर कृष्ण उसमें सम्मिलित नहीं है, उसके अंदर कृष्ण की खुशी नहीं है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया गया है, तो वो हमारे अपराध, हमारा सबसे बड़ा पाप है। अब देखो, हम कथा जानते हैं कि ब्राह्मण जो थे वो यज्ञ कर रहे थे द्वापर युग में, जब कृष्ण थे वो यज्ञ कर रहे थे, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, और कृष्ण आए के बोला हम मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ प्रसाद दो, लेकिन ब्राह्मणों ने मना कर दिया क्योंकि वो यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ करना बहुत अच्छा है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, लेकिन यदि कृष्ण उससे प्रसन्न नहीं है, कृष्ण उससे भिन्न कुछ चाह रहे हैं, तो वो सबसे बड़ा पाप है। तो ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया, उसी यज्ञ की सामग्री, अभी यज्ञ समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन यज्ञ की सामग्री में से प्रसाद उठाकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए लिया, तो वो ब्राह्मण पत्नियां भले यज्ञ नहीं कर रही थी, वो पुण्य नहीं कर रही थी, उनको कुछ वैदिक मंत्रास नहीं खबर थी, लेकिन क्योंकि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया है, तो वो पाप नहीं बल्कि सबसे बड़ा पुण्य है। और वो ब्राह्मण भले वो यज्ञ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन यदि वो कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर रहा है तो वो अपराध है। तो यदि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, ब्राह्मण याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा, मुझे उसके फल से कोई आसक्ति नहीं है, मैं वो कार्य कर रहा हूँ केवल किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो लिप्यते न स पापेन, फिर कोई पाप नहीं लगेगा। यानी कि हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो हर कार्य बंधन से रहित, चाहे वो पाप हो चाहे वो पुण्य हो। किस तरह, बहुत ही सुंदर भगवान ने यहाँ कहा, पद्म पत्र मिवांबसा, पद्म का क्या मतलब होता है, लोटस फ्लावर होता है जो कि जल के अंदर होता है लेकिन फिर भी कभी गीला नहीं होता। उसी तरह से जीव मनुष्य इस संसार में रहता है, यह संसार जो है वो कर्मों की जंजीरों में बांधता है जीव को, जिसके कारण बारंबार जन्म मृत्यु होती है, लेकिन यदि इसी संसार में रहकर जीव भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो वो कभी भी अपराधों से बंधता नहीं है, लिप्यते न स पापेन, और वो मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद ने अत्यंत सुंदर बताया कि अतएव वे केवल उन्हीं के हैं, यानी जो संसार में जो कुछ भी है क्योंकि भगवान से उत्पन्न हुआ है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। जो यह बलिबांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित होनी चाहिए। जिसको ये पता चल गया कि संसार भगवान का है, हर कुछ भगवान को प्रसन्न करने के लिए है, तो हर चीज भगवान की सेवा में ही नियोजित होनी चाहिए, है ना। हम तो भगवान के दास हैं, स्वयं हम भी भगवान की सेवा में ही नियोजित हो जाए। अब वो जब उसको रियलिटी पता हो जाती, इतना ज्ञान हो जाता है, तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस कार्य का मुझे शुभ परिणाम भुगतना पड़ेगा अथवा अशुभ परिणाम। गोपियों ने कभी ये नहीं सोचा कि हम यदि अपने भौतिक कर्तव्य को छोड़कर कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जा रहे हैं तो उसका कितना अशुभ परिणाम हो सकता है। यदि कार्य से कृष्ण प्रसन्न हो रहा है तो वो सबसे बड़ा पवित्र कार्य है, और इसी कार्य से ही हम जन्म मरण के बंधन से बच सकते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है कि यहाँ तक के विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है, तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं है। यानी कि ये जो शरीर है वो कोई साधारण जानवरों की तरह कार्य करने के लिए नहीं मिला है, बल्कि विशेष प्रकार का कार्य करने के लिए मिला है। जैसे शास्त्र कहते हैं अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह शरीर तुम्हें मनुष्य का मिला है तो तुम्हें क्या करना है, वास्तविकता के लिए जिज्ञासा करनी है, ब्रह्म को जानने का प्रयत्न करना है। तो यदि हम ऐसा कार्य इस शरीर से संपन्न करते हैं तो फिर कभी भी पाप कर्मों से कलमश से फंसेंगे नहीं, जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं पड़ेगा, बल्कि वैसे ही दूर अपराधों से वैसे ही दूर रहेंगे जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहकर भी कभी भीगता नहीं है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया था 3.30 में, मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा, कि आप आध्यात्म में पूर्णतया आत्मज्ञान से युक्त हो जाओ, आध्यात्म चेतना में आ जाओ और जितने भी कार्य हैं वो मुझे समर्पित कर दो। उस तरह से आप कभी भी कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे। और अंत में श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर इसका पूरा निचोड़ बताया कि तात्पर्य ये है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कार्य करता है, है ना। अगर वो भगवान से युक्त नहीं है, भगवान को नहीं जानता है, भगवान के विषय में नहीं खबर है, अपने वास्तविक अवस्था यानी भगवान का दास हो आत्मा हो ये नहीं पता है, तो वो सारा कार्य क्यों कर रहा है, केवल और केवल शरीर और इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर। बस किस तरह से मैं अपने शरीर और इंद्रियों को प्रसन्न करूं, और चाहे वो सीमित तौर पर प्रसन्न करना है अपनी इंद्रियों को या विस्तृत रूप से, क्योंकि एक तो वो खुद खाकर या फिर दूसरों को, सब अपनी फैमिली, कोई अपनी फैमिली के विषय में सोचता है, कोई अपने घर के विषय में सोचता है, कोई अपनी बिल्डिंग के विषय में सोचता है, कोई परिवार के विषय में सोचता है, तो कोई समाज के विषय में सोचता है, कोई पूरे देश के विषय में सोचता है। लेकिन ये वास्तव में क्या है, अगर इंद्रियों और शरीर से रिलेटेड कोई बात है उसके लिए यदि कार्य कर रहे हैं तो फिर वो क्या है, इसका मतलब है वो कृष्ण भावना विहीन है। परंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये समझकर कार्य करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, ये शरीर कृष्ण का है, अतः से कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए, मुझे केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना चाहिए, इसलिए मैं कार्य कर रहा। जैसे अगर कोई सोचे कि अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मैं तो कार्य कर नहीं रहा हूँ, बल्कि कार्य कौन कर रहा है, भौतिक प्रकृति कार्य करा रही है, इंद्रियाजेशु, कि इंद्रियां ही अपने विषयों में लगी हुई हैं और कार्य कर रही हैं, तो फिर कोई ये सोचता है फिर मैं तो आत्मा में कार्य करूं क्यों, इससे बेहतर मैं कार्य ही नहीं करता हूँ कोई भी, क्योंकि इंद्रियां कर रही है ना, फिर भले करें या ना करें मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं कर ही नहीं रहा हूँ, आइंदा से कुछ करूंगा ही नहीं बस। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि आपको कार्य क्यों करना है। आप अगर शरीर नहीं हो, आत्मा हो, फिर भी आपको कार्य करना है क्यों? भगवान बता रहे हैं आगे श्लोक नंबर, यत् त्यक्त वात्मशुद्धये, कि आपको आत्मशुद्धि के लिए कार्य करना है। कृपया भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। भगवान कहते हैं, कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। शब्दों का अर्थ, कायेन मनसा बुद्धया, कायेन अर्थात शरीर से, मनसा यानी मन से, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, केवलैर इन्द्रियैर अपि, केवलैर अर्थात शुद्धिकरण के लिए, इन्द्रिय यानी इंद्रियों से, अपि यानी भी, योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगिनः अर्थात कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कर्म अर्थात कार्य, कुर्वन्ति करते हैं, संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब आसक्ति, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, आत्मशुद्धये आत्मा की शुद्धि के लिए। अनुवाद, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कार्य करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब कोई कृष्ण भावनामृत में कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जाते हैं। श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.87 ने इसका वर्णन इस प्रकार किया है, इहायस्य हरे दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वप्यवस्थास्तु जीवन मुक्त स उच्च से, निखिलास्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अर्थात इहायस्य हरे दास्य, यदि वो ये सोचता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कर्मणा मनसा गिरा, फिर वो अपने शरीर मन या इंद्रियों के द्वारा जो भी कार्य कर रहा है, निखिला स्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते, भले वो अनेक अनेक कार्यों में लगा रहता है लेकिन फिर भी वो जीते जी मुक्त है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने शरीर मन बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। उसमें अहंकार नहीं रहता क्योंकि वह उसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और यह शरीर ही और ना ही यह शरीर उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर मन बुद्धि वाणी जीवन संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है और उस अहंकार से रहित होता है जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ। यही कृष्ण भावना मृत का की पूर्ण अवस्था है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अत्यंत सुंदर रीति से यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं कि आप फिर कार्य क्यों करो, ये मनुष्य देह आपको मिली है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ह्यूमन लाइफ इज मेड फॉर योगा। आपको क्या करना, योगिनः कर्म कुर्वन्ति। आपको योग से कार्य करना है। यानी योग का क्या मतलब होता है, रिकाउंट। कुछ कुछ लोग है ना योगिनः का सही मतलब नहीं समझते। इसके कारण वो समझते हैं कि योगी का क्या मतलब होता है, फिर भगवान बोलते हैं तस्मात योगी भव अर्जुन। अर्जुन तुमको योगी बनना चाहिए। तो मैं पहले समझती थी कि शायद भगवान बोल रहे हैं कि तुमको, जैसे योगी नहीं होते बाल काटते हैं और कपड़े नहीं पहनते हैं, लोयन का ऐसे पहन लेते हैं और फिर जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। उधर से कृष्ण बोल रहा है कि आपको युद्ध करना है, उधर से बोल रहा है तस्मात योगी भव अर्जुन। तो सबसे पहले हमें योग को समझना चाहिए कि योग क्या है और योगी किसको कहते हैं। योग का मतलब होता है रिकॉन्टेक्ट, यानी भगवान के साथ जो हमारा संबंध है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि हम कोई नया संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं ममैव अंश जीवलोके, मेरे ही है ये सब, जितने भी जीव हैं वो मेरे हैं और मैं कहाँ रहता हूँ, उन सबके हृदय में रहता हूँ। लेकिन जीव क्योंकि भौतिक इस प्रकृति में आने के बाद इस संसार में भौतिक प्रकृति उसके ऊपर हावी हो जाती है और अपने भगवान के साथ संबंध को वो भूल जाता है। तो योग का मतलब होता है अपने उस कॉन्टेक्ट को, भगवान के साथ अपने संबंध को दोबारा से स्थापित करना। तो यह जो मनुष्य जीवन जो हमें मिला है वास्तव में शुद्धिकरण के लिए मिला है। यहाँ पे भगवान ने कहा योगिन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। वो कार्य कर रहा है लेकिन इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, आसक्ति के लिए नहीं कर रहा, बल्कि क्यों कर रहा है, आत्म शुद्ध है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब बादल से पानी निकलता है तो पानी बहुत शुद्ध होता है ना, लेकिन जब वो भौतिक संसार में आता है और मिट्टी से जब उसका लिंक हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो पानी जो है वो अशुद्ध हो जाता है। अगर वो वाला पानी हम पियेंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा कि हमें उस पानी को फिल्टर करना पड़ेगा। उसी तरह से कॉन्शियसनेस भी हमारी जो है वो उस भौतिक प्रकृति से संपर्क होने के कारण मलिन हो गई है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉन्शियसनेस को भी फिल्टर करना पड़ेगा। तो उसे कार्य करने किस लिए, आत्म शुद्ध है, आत्मा को शुद्ध करने के लिए। क्योंकि कॉन्शियसनेस हमारी मलिन हो गई है ना, तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं प्यूरिफिकेशन इज द पर्पस ऑफ अवर लाइफ। अपनी इस लाइफ को शुद्ध करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। क्योंकि ऋषभ देव बता रहे हैं अपने बेटों को नाहम देहो देह भाजाम निर्लोके अष्टान कामान अहर्ते विट बुझान। मेरे पुत्रों, ये जो मनुष्य देह आपको मिला है वो कुत्ते और सुअरों की तरह मल खाने के लिए नहीं मिला है, बल्कि ये क्यों मिला है, ये तपो दिव्यम, कि आपको दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है। तपस्या का मतलब होता है त्याग, और किस लिए त्याग करना है, दिव्य आध्यात्म के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी समस्त आसक्ति जो कर्मों के अंदर है उसको त्यागने के लिए आपको कार्य करना है। क्योंकि आसक्ति जो भौतिक कार्यों में है भौतिक वस्तुओं में या व्यक्ति में है, जब तक वो उसकी आसक्ति समाप्त नहीं होगी तब तक आध्यात्मिक शुद्धि नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियरपि। कायेन का मतलब होता है शरीर से, मनसा अर्थात मन से, बुद्धया अर्थात बुद्धि से, केवल इंद्रियरपि कि वो शरीर से मन से बुद्धि से कार्य करता। अब यहाँ पर केवल इंद्रियरपि लिखने की क्या जरूरत है, शरीर पहले ही बोल दिया कि शरीर से कार्य कर रहे हैं, फिर इंद्रिय से क्या, इंद्रिय और शरीर में क्या डिफरेंस है। अब देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहे होते हैं बट उसमें मन बुद्धि नहीं लगा हुआ होता है ना। कभी कभी ऐसा होता है जब हम जप कर रहे होते हैं उसमें मन नहीं लग रहा है, केवल इंद्रियां लग रही हैं, मुंह से भी सही तरह से निकल, बस मुंह से वर्ड्स निकल रहे हैं वो भी सही तरह से प्रोनाउंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन कार्य फिर भी हम क्यों कर रहे हैं, आत्मशुद्ध है वो कार्य, भले उसमें हमारी इतनी इंटेंशन नहीं होती है लेकिन समय तो भगवान के लिए निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आप कार्य कर रहे हो, चाहे शरीर से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, बुद्धि से कर रहे हो या खाली इंद्रियों से ही कर रहे हो, लेकिन कर किस लिए रहे हो, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है, वो कर्मों के फलों के कारण कार्य नहीं कर रहा है बल्कि आत्मशुद्ध है। तो भले ही वो जब जो है वो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं कराएगा लेकिन क्या होगा, उससे आत्मशुद्धि होगी। धीरे धीरे आत्मशुद्धि होते 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 आगे पहले प्रोसेस होगा उसके बाद प्राप्ति होगी, है ना। पहले आत्मशुद्धि हो जाएगी तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है बहुत ही सरल कि आपको आत्मा की शुद्धि के लिए, चेतना की शुद्धि के लिए क्या करना है, चेतो दर्पण भाषणम हरिनाम संकीर्तनम, कि ये चित्त का दर्पण यदि आपको साफ करना है तो यही भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहो करते रहो करते रहो, आत्मशुद्धि चेतना शुद्ध हो जाएगी, कॉन्शियसनेस फिल्टर हो जाएगी, तो उसके उस कॉन्शियसनेस में को कृष्ण कॉन्शियसनेस बनाया जा सकता है ना। अगर कॉन्शियसनेस में बहुत ही आसक्ति भरी हुई होगी तो फिर हम भगवान के विषय में कैसे सोच सकते हैं, हम कोई भी कार्य करेंगे केवल क्यों करेंगे, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए या भौतिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए, लेकिन जैसे जैसे आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होगी, आत्मशुद्धि प्राप्त होगी तो कार्य क्यों करेंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध, वो कोई भी कार्य कर रहा है वो, अगर योगी कोई भी कार्य करता है तो क्यों कर रहा है, अपनी आत्मशुद्धि के लिए कर रहा है, उसका ये जीवन वास्तव में भक्तों ये मनुष्य देह जो है वो बहुत बहुत यत्न करने के बाद प्राप्त होती है, और इस देह के अंदर हमें यही आत्मशुद्धि जो है वो हम इसी जन्म में कर सकते हैं, और कोई दूसरे जन्मों में हम आत्मशुद्धि के लिए कार्य नहीं कर सकते। कोई गधा कुत्ता सूअर ये सोच नहीं सकता कि मैं भगवान के लिए खा रहा हूँ, है ना, वो कभी ये नहीं सोच सकता है कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं बैठ के गटर में विष्ठा खा रहा हूँ या फिर कोई भी गंदगी कर रहा हूँ यहाँ पर जो भी, वो मैं कभी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूँ, कभी भी नहीं सोच सकता है, केवल मनुष्य ही सोच सकता है। लेकिन यदि जिस प्रकार एक राजा का पुत्र हो और वो राजा का पुत्र प्रिंस है और गलियों में जाकर कचरा उठा के खा रहा है, गंदगी उठा के खा रहा है, कपड़े भी ढंग के नहीं पहन रहा है और ऐसे ऐसे पागलों की तरह घूम रहा है, तो क्या कहेंगे, अरे देखो ये राजा का पुत्र है फिर भी अभी वो मिष्ठा खा रहा है, गंदगी खा रहा है, सड़कों पे घूम रहा है, तो कितना मतलब वो अपने इमेज से कितना नीचे गिर जाता है। उसी प्रकार जब हमें मनुष्य देह मिलती है तो हमसे शास्त्र ये उपेक्षा करता है कि ये कार्य करेंगे अब किस लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान हमसे ये उपेक्षा करता है कि मैंने इनको मनुष्य देह दिया है, अब ये भौतिक ये जानवरों की तरह कार्य नहीं करेंगे बल्कि किस लिए कार्य करेंगे, भगवान कहते हैं आत्मशुद्धि कर्म, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध, वो कार्य करेंगे आत्मशुद्ध के लिए। अपने आत्मा को पवित्र करने के लिए कार्य करेंगे, शुद्धि के लिए कार्य करेंगे और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, क्योंकि लिप्यते न स पापेन। जब हम इस तरह से आत्म शुद्धि के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, तो फिर कार्यों के बंधन में नहीं फंसते हैं। तो फिर जब कर्मों का बंधन नहीं होता है तो हमें दोबारा इस भौतिक संसार में आना नहीं पड़ता, जन्म मृत्यु जरा आदि आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक क्लेशों से ग्रस्त नहीं होना पड़ता है, बल्कि भगवान के परम धाम को की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो कोई भी कार्य, अब देखो हमारे संसार में बंधन का कारण क्या है, कार्य है ना, कार्य और कार्यों के अंदर मोह और आसक्ति और उनके फलों के अंदर आसक्ति, ये इच्छाएं हैं जो कि हमें इस संसार में बांधती हैं, है ना। कर्मों के कर्म बांधते हैं, कर्मों के अंदर जो फल हैं उनके अंदर आसक्ति और इच्छाएं हमें कर्मों में बांध देती हैं। अब इन्हीं कार्यों को अलग वे से करने से, यानी कि वही कार्य हम करेंगे और कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करेंगे, तो यही कार्य हमें बंधन से मुक्ति दिलाएंगे। तो श्री रूपा जी अत्यंत ही सुंदर एक मिसाल देते हैं कि यदि आप जंगल में जा रहे हो और आपके पांव में कांटा लग जाए, तो कांटे के कारण क्या होगा, आपको पीड़ा हो रही है, और उस कांटे को निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक दूसरा कांटा उठाओगे और उस दूसरे वाले कांटे के माध्यम से पहले वाले कांटे को आप निकाल लोगे। वैसे इस संसार में हमारे बंधन का कारण क्या है, मोह और आसक्ति, यानी कार्यों के अंदर, अपने कार्यों के अंदर जो इच्छाएं हैं, जो मोह है, वो आसक्ति है, वो हमें बंधन में फंसती है। और वही मोह, वही आसक्ति, वही इच्छाएं अगर हम कृष्ण के प्रति रखते हैं ना, तो वही जो भौतिक कॉन्शियसनेस है वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब चेंज हो जाती है तो क्या होता है, वो हमारे बंधन का कारण नहीं बनती है। ये कैसे होता, जैसे संसार में अब सब लोग का और कोई कुछ करे या ना करे खाना खाता है, ठीक है। अब खाना खाते हैं तो या तो वो नॉन वेजिटेरियन खाएंगे, ठीक है, नॉन वेजिटेरियन खाएंगे फिर तो फंसेंगे। कैसे फंसेंगे, एक मुर्गी जो उसने मारी, नेक्स्ट जन्म में जब वो मुर्गी बन के आएगा तो उसको मरना पड़ेगा, ये सिद्धांत है, कर्मों का नियम है। तो दूसरे नंबर पे क्या आता है, वेजिटेरियन। अगर कोई वेजिटेरियन भी खाता है तो भगवान क्या कहते हैं, मुंजते ते तो गम पापा ये पतंत्यात्मक, अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए यदि आप कार्य कर रहे हो, ये खा रहे हो भोजन, तो आपको पाप अपराध लगेगा, क्योंकि उसको भोजन को लाने के बाद, बनाने के बाद, खाने तक आपने कई अपराध किए हैं, तो उन अपराधों को आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन यदि हम वही खाना, भक्त कैसे खाता है, अरे मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए बना रहा हूँ, भगवान के लिए भोग बना रहा हूँ, भगवान खाएंगे फिर भगवान जो मुझे देंगे वो कृपा की सूरत में मैं स्वीकार करूंगा। वास्तव में हमें वेजिटेरियन नहीं बनना है, क्या करना है, कृष्णटेरियन। भगवान श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णटेरियन, जो कृष्ण खाता है केवल हम वही खा सकते, तो वो बंधन में नहीं फंसाएगा। उसी प्रकार देखो, अगर कोई हर कोई जीव जो है वो अपने कानों से श्रवण कर रहा है, अब कानों से श्रवण कर रहा है तो भौतिक ही श्रवण कर रहा है, भौतिक कथाएं किसी व्यक्ति के विषय में, किसी वस्तु के विषय में, किसी भौतिक। लेकिन भक्त क्या श्रवण करता है, सदैव भगवान के विषय में श्रवण करने की लालसा में, भगवान के विषय में श्रवण। इवन बात भी हो रही होगी ना, जो भगवान के विषय एक नहीं होगी तो उसको ऐसा लगेगा मेरे काम की नहीं है, एयरफोन डालो कान में, भगवान की कथा डालो, कथा सुननी। तो इस तरह से जो भगवान के विषय एक बात श्रवण करने से कभी बंधन नहीं पड़ता, उसी तरह लोग समय सदैव बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, हर कोई लोग बोलेंगे, लेकिन भक्त सदैव भगवान, भगवान कहते भी है 9.10 में बहुत सुंदर, मच्छितामद्गतः काणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मेरे अंदर होते हैं, वे सदैव दूसरों को बताने के लिए मेरे विषय में बात करते हैं और उसी से बहुत तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे विषय में बात करके, मेरे विषय में श्रवण करके बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अब सुन भी रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, खा भी रहे हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, बोल भी रहे हैं कृष्ण। अभी देखो इस संसार में क्या होता है, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसे मैंने एक लेक्चर में सुना था कि जैसे इस संसार में बहुत सारे मैगजीन्स होते हैं ना, और मैगजीन्स के डायरेक्टर्स भी होते हैं, सब बहुत बहुत मेहनत करते हैं और उस मैगजीन में अलग अलग जगहों से वो है ना नॉलेज लेकर आते हैं, वो लिखते हैं बहुत बहुत, लेकिन वो इतनी भौतिक होती है, या तो फिर वो सत्वगुण में होगी या फिर रजोगुण में रहकर कार्य करेंगे या तमोगुण में रहकर करेंगे, तो कोई भी, बल्कि ये जो लिखना है वो ज्यादातर क्योंकि ज्ञान का कार्य है वो तो सत्वगुण में रहकर कार्य करेगा, लेकिन फिर भी वो कितनी भी भले मेहनत कर रहा है लेकिन यदि उसके अंदर आसक्ति है, मोह है और कर्मों के फल की इच्छा है, तो वो उसके उसको क्या करेंगे, बंधन में पा सकेंगे। लेकिन वही मेहनत यदि वो बैक टू गॉड हेड मैगजीन को लिखने में या उनके लिए कार्य कर रहा है, उसके लिए ढूंढ रहा है किस तरह से इसको मैं अच्छे से अच्छा इसके अंदर आर्टिकल्स लिखूं और सब लोग पढ़े, तो वो जो बैक टू गॉड हेड मैगजीन है वो कहाँ लेकर जाएगी, वो बैक टू गॉड हेड ही लेकर जाएगी, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो यदि हम कोई भी भौतिक कार्य कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, आत्मा शुद्ध है, आत्मा की शुद्धि हो रही है, आत्मा को उसके रियल स्वभाव की ओर लेकर जा रहा है, क्योंकि योगिना रिकॉन्टेक्ट हो रहा है भगवान के साथ, हमारा योग वापस से जुड़ रहा है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने कहा, क्या बताया कि योगी जन आसक्ति रहित होकर, क्योंकि उसके अंदर कोई आसक्ति नहीं होती है, शरीर मन तथा इंद्रियों के द्वारा केवल शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। और श्री प्रभुपाद ने तात्पर्य में कहा कि जब कोई कृष्ण भावनामृत ने कृष्ण की इंद्र तृप्ति के लिए शरीर मन बुद्धि अथवा इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है, तो भौतिक कर्म से मुक्त हो जाता है। अगर केवल ये सोच लिया जाए बुद्धि से कि मुझे इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना है, तो वो भौतिक कर्म से सर्वथा मुक्त होता है, क्योंकि उनसे कोई भी भौतिक फल प्रकट नहीं होता, यानी कि उससे आप कभी भी बंधन में नहीं फंसते हो। तो श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि भले ही आप भौतिक स्तर से ऐसा लग रहा है कि वही कार्य कर रहे हो, लेकिन क्योंकि उसके अंदर आपका अहंकार नहीं है ना, अहंकार नहीं है, काम नहीं है, इच्छा नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब क्यों होते हैं, जब हम अपने आप को कुछ समझ रहे हैं, इस शरीर से रिलेटेड है सब, आत्मा के अंदर ये सब विकार नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि उसके अंदर अहम भाव नहीं है कि मैं कार्य कर रहा हूँ, मैं तो दास हूँ, मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, तो ये सब विकार उसके अंदर नहीं आते हैं। भक्त सदैव क्या सोचता है कि मैं तो स्वयं भी भगवान का दास हूँ, मेरा ये शरीर भी भगवान का दास है और मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा हूँ, मैं तो भोगता ही नहीं हूँ। मनुष्य जो भौतिक लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, कोई भी कार्य करते हुए सोचते हैं कि मैं इससे कैसे सुखी हूँ, है ना। बच्चा जब पढ़ने जाता है ना स्कूल, तभी भी यही सोचता है कि इस पढ़ाई के बाद मैं ये बनूंगा, उसके बाद मुझे प्रसन्न, यानी कि वो भगवान बनना चाहते हैं। प्रसन्नता यदि खुद के लिए होती है तो अपने आप को भोक्ता जो समझता है, तो इसी को बोलते कि मैं भोक्ता बनना चाहता हूँ, इसी के लिए तो हमारा पतन हुआ है इस संसार में कि हम खुद को भोक्ता बनाना चाहते हैं। चाहे जो भी संसार में है वो सब कार्य करके संतुष्ट अपने आप को करना चाह रहे हैं, तब तक वो अपने आप को भोक्ता समझ रहे हैं और वो कार्य उनको बंधन का कारण बनेगा। लेकिन यदि हम ये सोचते हैं कि हम ये भोक्ता नहीं है बल्कि हम तो दास हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहे हैं और भगवान को प्रसन्न करते 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 एक दिन वास्तविक स्थिति, क्योंकि शुद्धिकरण हो रहा है ना, तो इस दिन वास्तविक स्थिति में आ जाएंगे, वही कार्य जो हमारे बंधन का कारण बन रहे हैं वही कार्य हमारे मुक्ति का कारण बनेंगे, जिस तरह एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा यूज किया था। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हर वो चीज जिस पर उसका अधिकार है, तो वो क्या समझता है कि ये सारा का सारा कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि मेरा नहीं है, भगवान के लिए है। तो इस तरह करने के बाद जब ये मनुष्य ये सोचता है कि मैं कृष्ण का हूँ, मेरे पास जो कुछ है वह कृष्ण का है, यह शरीर कृष्ण का है, सब कुछ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए, यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। और इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो भगवान कहते हैं कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियेरपि, भले वो मन से, बुद्धि से, शरीर से या खाली इंद्रियों से भी कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने का प्रयास कर रहा है। तो योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम, क्योंकि वो कार्य कर रहा है लेकिन कार्य के परिणामों में उसकी कोई आसक्ति नहीं है, संग नहीं है, तो संग को त्याग रहा है, आसक्ति को त्याग रहा है, तो क्या हो रहा है, आत्म शुद्ध है, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा को शुद्ध करने के लिए कार्य कर रहा है ताकि योग में वो स्थित हो सके, यानी भगवान के साथ अपना भी कॉन्टेक्ट बना सके। भगवान के साथ अपने योग को जोड़ के जब वो कार्य करेगा तो कैसा होगा, लिप्यते न सपापे न, वो कभी भी अपराध से लिप्त नहीं होगा, बल्कि जिस प्रकार पद्म पत्र में वाम बसे, पद्म पत्र कमल जो है वो पानी में रहते हुए भी पानी से दूर रहता है, उसी तरह योगी जो होता है जिसने अपने भगवान के साथ अपना योग जोड़ दिया है वो कार्य करते हुए भी कार्य के बंधन में कभी नहीं फंसता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। हरे कृष्ण।